प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं नूतन मिश्र परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय 5 मुंबई से कृतिका भाग 2 के पाठ माता का अंचल इस पाठ पर आपसे चर्चा करूंगा। माता अर्थात माँ, अंचल अर्थात आंचल या गोद। इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय हैं, जिनकी गणना हिंदी के श्रेष्ठ लेखक और उपन्यासकारों में होती है। शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में बिहार के शाहाबाद में हुआ था। छात्रों, आपकी पुस्तक कृतिका में दिया हुआ पाठ माता का अंचल शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें ग्रामीण जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। लेखक ने गांव के जीवन तथा वहां के बच्चों की पसंद और उनके खेलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। देहाती दुनिया उपन्यास को शिव पूजन सहाय ने सन 1926 में लिखा था। उस समय देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था। अतः इस पाठ में लेखक एक अविकसित गांव का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। शिव पूजन सहाय को सन 1960 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 21 जनवरी 1963 में पटना में शिव पूजन सहाय की मृत्यु हुई। इस पाठ में लेखक ने शहर की चमक से दूर गांव की सहजता को बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। लेखक बचपन में अपने माता की अपेक्षा पिता के साथ अधिक से अधिक रहता था। उसके पिता भी उसका भरपूर ध्यान रखते थे। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठते तो अपने पिता बैठते तो अपने साथ ही उस लेखक को बैठा लेते थे। वे लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वैसे भोलानाथ का नाम तारकेश्वरनाथ भी था। वे अपने पिता के लाड़ और प्यार में अपना जीवन गुजार रहे थे। वे अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। बाबूजी ने लेखक को बचपन से पाठ पूजा के संस्कार दिए। अपने साथ पूजा में बिठाकर भोलानाथ के माथे पर वे चंदन लगाते थे और भोलानाथ को सामने बिठाकर रामायण का पाठ करते थे। भोलानाथ भी अपने पिता के अनुसार पाठ करने की कोशिश में होठ चलाते थे। पूजा समाप्त होने के बाद भोलानाथ के पिता उन्हीं के सामने कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखते और उन लिखे हुए कागज के टुकड़ों को आटे में लपेटकर छोटी छोटी गोलियां बनाते थे और उन गोलियों को लेकर तथा भोलानाथ को कंधे पर बैठाकर गंगा के घाट पर पहुंच जाते थे और मछलियों को खिलाते थे। भोलानाथ अपने पिता को बहुत प्यार करते थे और उन्हीं के साथ खेलते थे। पिता को कुश्ती में हराने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पिता भी स्नेहवश अपनी मूछ दाढ़ी भोलानाथ के कोमल गालों पर गढ़ा देते थे। बाल सुलभ चेष्टावश भोलानाथ उनकी मूछें खींचने लगता तो वे रोने का नाटक शुरू कर देते थे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते थे। वे अपने पिता के साथ बड़े प्यार से हंसते खेलते भोजन करते थे। पिताजी भी भोलानाथ की पसंद का ध्यान रखते और उन्हें गोरस और भात को मिलाकर खिलाते थे। माता भी भोलानाथ का पूरा पूरा ध्यान रखती। वे भी उन्हें खेल खेल में अधिक से अधिक भोजन खिलाने का प्रयास करती। भोलानाथ को नहलाना और उसके सिर पर तेल की मालिश करना आदि कार्य माँ रोजाना करती, चाहे भोलानाथ छटपटाए या रोए। भोलानाथ के खेल आपके खेलों जैसे नहीं थे। वे पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर मिठाइयों की दुकान लगाते थे। मिट्टी के ढेलों के लड्डू, पत्तों की पूड़ियां, गीली मिट्टी की जलेबी आदि बनाते थे। और भोलानाथ के पिता और उनके दोस्त ही उन वस्तुओं के खरीदार होते थे। दुकान के खेल से जब मन भर गया तो मिट्टी का घरौंदा बनाते थे और उसे एक अच्छा घर का रूप देने के लिए माचिस की पेटियों की किवाड़, दांतुन के खंबे, तिनकों का छप्पर बनाते थे। बारात निकालना भोलानाथ के खेलों में से एक प्रिय खेल था। कनस्तर का तंबूरा बनाते थे, आम के पौधे की शहनाई, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी। मित्र मंडली में से ही कोई दूल्हा बनता था। इस प्रकार बारात सजकर दुल्हन के घर जाती और वहां से दुल्हन को विदा कराकर लाती थी। इन सभी खेलों को देखकर यह बात तो स्पष्ट है कि गांव के बच्चे उपलब्ध साधनों से ही अपना मनोरंजन किया करते थे। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। बच्चे घरों के बाहर थे। भोलानाथ और उसके साथी आंधी और वर्षा से बचने के लिए दौड़कर आम के बाग में आ गए। थोड़ी देर में जब आंधी शांत हो गई तो काले बादल घिर आए। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी। देखते ही देखते तेज वर्षा शुरू हो गई। सभी बच्चे भीगने से बचने के लिए बाग में पेड़ों के नीचे जाकर छिपने लगे। थोड़ी देर बाद जब वर्षा रुक गई तब सभी बच्चे उछलते कूदते अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। रास्ते में मूसन तिवारी मिले तो सभी उन्हें चिढ़ाने लगे। तिवारी जी को चिढ़ाने में भोलानाथ का मित्र बैजू सबसे आगे था। बैजू जो बोलता था सभी मित्र तिवारी को चिढ़ाने के लिए वही बोलते थे। बच्चों से परेशान होकर तिवारी जी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो सभी बच्चे भाग गए। केवल भोलानाथ ही तिवारी जी की पकड़ में आ पाए। वे भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले गए और वहां पर गुरुजी से उनकी शिकायत कर दी। गुरुजी ने भोलानाथ को बहुत डांटा। भोलानाथ के पिता को जब इस बात का पता चला तो वे तुरंत पाठशाला पहुंच गए और वे भोलानाथ को अपने साथ ले आए। गुरुजी की डांट से भोलानाथ बहुत दुखी थे। पिता के साथ घर लौटते समय रास्ते में भोलानाथ को वही मित्र मंडली फिर से मिल गई। उसे देखकर भोलानाथ अपना दुख भूल गए और पिताजी का साथ छोड़कर उस मंडली के साथ जा मिले। मित्र मंडली के साथ भोलानाथ उछलते कूदते एक टीले पर जा पहुंचे। उस टीले पर चूहों के बहुत से बिल थे। बच्चे वर्षा का भरा हुआ पानी हाथों में भर भर कर उन बिलों में डालने लगे। उसी समय एक बिल से एक सांप निकला। सभी बच्चे उसे देखकर रोते चिल्लाते गिरते पड़ते भागने लगे। किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत में चोट लगी। भोलानाथ भी किसी तरह दौड़ते पड़ते घर में आ गए। बाबूजी घर के बरामदे में ही थे। उन्होंने भोलानाथ को भयभीत देखा तो आवाज दी, बेटा क्या हुआ? परंतु भोलानाथ ने आज पिताजी की आवाज को अनसुना कर दिया और कमरे में बैठी हुई माँ के पास गए तथा उसकी गोदी में छिप गए। उस समय भोलानाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। माँ ने भी भोलानाथ को अपने सीने से लगा लिया और इतने भयभीत होने का कारण उससे पूछने लगी। भोलानाथ ने रोते सिसकते हुए माँ को सारी घटना बता दी। बाबूजी भी कमरे में आ गए और भोलानाथ को माँ के अंचल से अपनी गोद में लेने की कोशिश की, परंतु आज भोलानाथ बाबूजी की गोद में नहीं आए और माँ के अंचल में ही छिपे रहे, क्योंकि माता तो माता ही होती है। विद्वानों ने सही कहा है कि माता स्वर्ग से भी महान होती है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपके सामने माता का अंचल पाठ का सार प्रस्तुत किया। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको समझाता हूं। पहला प्रश्न है, मां के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ को मां के अंचल में ही प्रेम और शांति क्यों मिलती है? इसका उत्तर है, इस कहानी के अनुसार भोलानाथ को अपने पिता से बहुत लगाव था। भोलानाथ के पिता ने पूरी कहानी में उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार किया है, परंतु जब भोलानाथ पर घोर मुसीबत आती है तथा उसकी जान पर बन आती है, तब उसे दुनिया में मां की गोद सबसे ज्यादा सुरक्षित लगती है। अपनी सुकोमल भावनाओं के कारण यह भी कहा जाता है कि मां तो मां ही होती है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए भोलानाथ सब कुछ छोड़कर केवल मां की गोद में ही जाकर छिपता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसका उत्तर है, बच्चों की अपनी स्वाभाविक आदत होती है कि वह अपनी उम्र के बच्चों में ही आनंद का अनुभव करता है, उनके साथ ही खेलने में रुचि लेता है। यह बात भी देखी जाती है कि बालक अपने मित्रों के बीच रोने में शर्म की अनुभूति करता है, इसलिए वह वहां रोता नहीं है, अपितु प्रसन्नता और सुख का अनुभव करता है। तीसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर इस प्रकार है, भोलानाथ के समय और आज के समय में बहुत अंतर आ चुका है। उस समय के बच्चों के पास खेलने के सीमित साधन थे, वे घर की बेकार वस्तुओं से अपने खेलने के लिए खिलौने आदि बनाते थे तथा अपने मित्रों के साथ खेलते थे। उस समय उन्हें घर से बाहर निकलकर खेलने की पूरी आजादी थी। आजकल के बच्चे घर पर रहकर कंप्यूटर या मोबाइल पर खेलना पसंद करते हैं। आजकल के माता पिता भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे घर के बाहर धूल मिट्टी में खेलें, इसलिए वे अपने बच्चों के लिए बाजार से खिलौने लाकर उनकी मांग पूरी कर देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस समय के बच्चे अपने मित्रों के साथ समय गुजारते थे, जबकि आजकल के बच्चे घर की चार दीवारी में कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर ही अपना मनोरंजन करते हैं। इसके बाद में कुछ प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। दूसरा प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को एक अनुच्छेद में लिखकर व्यक्त कीजिए। तीसरा प्रश्न है, आप अपने माता पिता के प्रति आदर और प्रेम किस प्रकार व्यक्त करते हैं? एक अनुच्छेद में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।